커피. 그래서 그 컵 하나 참 거예요.
벅터.
벅터 말아요.
시바이르기 시비아이기 불탈린.
반차칼파타로베차트파신드테이바차 파티타남 파바네브 바이스미 마하바단다야 크리스나 프레마 프라다야테 크리스나야 크리스나 차이탐나남 메가우가치 헤 크리스나 카루나 신도 디나 반도 자갓파테 गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कंचन गौरंगी राधे बिंदावनेश्वर विश्वानुसुतिं हा देवी काकू हर गदगद याद्यवाचा जाचे निपत्त भोवि दंडवतोद भटारती पाश्चा प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा गंगे तव गणे अंगश्यामलिन छटा फिरहित मंदे कुतिंदे जातिं जागुदरोत संविदध तंगपट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलकुं भक्त्या विघ्नापराधलक्ष्मीतरंगमस्मयी तां शरण प्रपन्ना नमस्ते चरण गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय भैराग्य जुग भक्ति रसम अपान्यन मानन भेक्षिनंदन कृपां बुधिरिजा पर दुख दुखी सनातन स्तम श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सदा यं प्रप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह पातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूत गोप कुमार का संवाद चल रहा है। वो बतला रहे हैं कि जैसे भगवान के अवतार होते हैं और भगवान एक होने पर भी ये कहानी को लेकर के आती हैं सब, बिना लड़कियों को लिए हुए इन लोगों का मन ही नहीं भरेगा, छोटी छोटी बच्चों को तो जैसे भगवान एक होने पर भी उनके विविध अवतार होते हैं, ऐसे ही पराशर शक्ति
विविधैव
एक ही भगवान है, ये उनकी शक्ति भी एक वो पराशक्ति है, किंतु विविधैव श्रूयते जैसे जैसे भगवान के अवतार होते हैं वैसे उनकी शक्ति का भी अवतार है। अब जैसे वो कार्य करती हैं ऐसे ही उनका नाम भी होता है, अलग अलग नाम होता है। अरे चुप कराओ उसे, चुप। कल उन्होंने बतलाया था कि एक ही शक्ति बैकुंठ में, द्वारकापुरी में, देवताओं के पास में, भगवान के अवतारों के पास में, वो विविध रूप में होती है। कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है कि जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी हैं, वो लक्ष्मी जी की भी कृपा को भक्त लोग नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि भगवान की जो नारायण है पर उनकी तो महालक्ष्मी जी हैं और वो चंचला नहीं अचला है, अचल रूप में उनकी सेवा करते हैं, किंतु समुद्र से जो समुद्र मंथन के बाद में लक्ष्मी जी पैदा हुई और उन्होंने विष्णु का वर्ण किया, वो पति खोज रही थी और किसी भी देवता को उन्होंने वर्णन नहीं किया, नारायण को ही वर्ण जयमाला दे दी, तो ये लक्ष्मी चंचला है। पीछे से लक्ष्मी इनका परिणय उनसे हुआ है, नारायण से उनका परिणय हुआ है। ये लक्ष्मी जी धन इत्यादि की अधिष्ठात्री देवता है, भक्त लोग इनको ही नहीं चाहते, ये यदि उनकी कुछ सेवा भी करनी चाहती हैं, इनकी इच्छाओं को पूर्ण भी करना चाहती हैं, तो ये लोग उनको प्रणाम करके छोड़ देते हैं। और ऐसी लक्ष्मी से ही पुराने भक्तों की तो बात ही क्या है, नवीन यदि कोई भक्त है तो भी भगवान का अत्यंत प्रिय है। वहाँ पर उद्धव के लिए भगवान ने जो कहा है, हे उद्धव, आत्मजोनि ब्रह्मा और हमारे अभिन्न प्रिय के रूप में जो शंकर लक्ष्मी और दूसरे, हमारा शरीर भी उतना प्रिय नहीं है जितना तुम हमारे अत्यंत अधिक प्रिय। तो यहाँ इस लक्ष्मी जी के ही संबंध में कहा गया ना? उस नित्य रूप में जो नारायण के पास में रह करके सेवा करती है, वो यदि सुन ले इस बात को तो वो क्या करेंगी,
बिगड़ जाएंगी।
इसलिए उनके संबंध में इसको मत लो, इस लक्ष्मी जी के संबंध में। अथवा भृगु कन्या, जो भृगु की कन्या के रूप में प्रकट होकर के विष्णु का वर्णन किया था, उनके लिए कहा जा सकता है। इसलिए कहां पर किसके लिए शास्त्रों में क्या बात कही गई है वो तो विज्ञ जो वैष्णव लोग हैं, जो गुरु परंपरा से इसको श्रवण किए हैं, वो लोग समझेंगे। नहीं तो जहां तहां इसको मत लगा देना, नहीं तो ये हो जाएगा जे लक्ष्मी राधिका जी का भी नाम है तो राधिका जी से भी वो भक्त जो है वो बड़ा हो जाएगा, उनसे भी उद्धव बड़े हो जाएंगे। जो उद्धव चाहते हैं कि हम गोपियों की चरण रेणु हम अपने सिर पर लेना चाहते हैं, तो सर्व लक्ष्मीमयी तो राधिका जी ही हैं, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कौन से लक्ष्मी के संबंध में कहाँ कौन सी बात कही गई है उसको विचार करना पड़ता है। इसलिए हम अपने सिद्धांत को ठीक रखने की चेष्टा, ये रहेगा वैष्णव के संग में ही ये सिद्धांत होते हैं वहीं पर दोष होने से, नहीं तो जहां तहां लगा देने से अनर्थ हो जाएगा। तो जो अणिमा इत्यादि सिद्धि को देने वाली, ब्रह्मा इत्यादि को संपत्ति देने वाली और देवताओं को ऐश्वर्य इत्यादि देने वाली लक्ष्मी जो निकली हैं समुद्र के मंथन से, उन्हीं के संबंध में इसको समझा जाए। और उनसे ही नवीन पुराने भक्तों की तो बात क्या, नवीन भक्त भी श्रेष्ठ है, किंतु जो सब समय भगवान में के अंक शायनी और उनके सब समय चरण दबा करके सेवा करने वाली जो लक्ष्मी हैं, जो स्थिर हैं चंचला नहीं, उनके लिए ऐसा मत कहना, ऐसा मत समझना। इसलिए ऐश्वर्य प्रदा देवी को ही मुमुक्षु मुक्त भक्त गण प्रत्याग करते हैं। भक्तों की तो बात क्या, जो मुमुक्षु हैं मुक्ति की इच्छा करने वाले और जो मुक्त हैं और भक्त लोग, ये तीनों प्रकार के लोग ऐसे संपदा वाली धनदात्री देवी का को आदर नहीं करते। जो महालक्ष्मी हैं, जो भगवत प्रिया हैं, धरित्री देवी, भू देवी, नीला देवी ना,
भू लीला,
भू और लीला, ये इनके संबंध में वो चीज नहीं कही गई है। कोई भी भक्त इनकी उपेक्षा नहीं करेगा, तब हाँ उपेक्षा तो नहीं करेगा, किंतु जो समस्त अवतारावली के बीज हैं स्वयं कृष्ण है? और उनकी जो प्रिया श्रीमती राधिका जी, उन्हीं की कृपा कटाक्ष कोई यदि चाहता हो तो इनको आदर करते हुए भी इनकी कृपा की भीख नहीं मांगेगा, वो तो वहीं पर मांगेगा। तो इसको अनादर न समझा जाए, वैष्णव मात्र की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि कृष्ण का एक अनिष्ट रसिक तत्वज्ञ यदि कोई वैष्णव हो तो उसका आदर करना चाहिए। तो इसका मतलब नहीं ये और बाकी का अनादर कर दिया है ना, वो अनादर नहीं तो अपराध हो जाएगा, उनके चरण में भी अपराध नहीं होना चाहिए, किंतु हृदय के साथ में सेवा करेगा उसी भक्त का जो कृष्ण एकांत, कृष्ण का एकांतिक रसिक और तत्वज्ञ वैष्णव है। मान लिया कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी बहुत से सैकड़ों भक्त हैं, उत्सव कोई हो रहा है, तो उसमें कोई एक ऐसा अनन्य रागानुगा और उसमें भी रूपानुगा कोई वैष्णव हो तो उसको हम आदर अधिक देते हैं, किंतु चतुराई के साथ में देना होगा, जिससे कि साधारण लोग हैं मध्यमाधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी या न समझे कि हमारी उपेक्षा हो रही है। इस प्रकार से चतुराई वैश्य जे जन कृष्ण भजे से बौर चतुर, वो जथा योग्य सम्मान देता है जीवों को, जथा योग्य सम्मान दिवे यानी कृष्ण अधिष्ठान, इसलिए जथा योग्य सम्मान देना, किंतु क्रमशः बोध अधिक देगा। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है ना, कृष्ण जस्य तंग मनसा द्रियत दीक्षा चेत प्रणति भजन तमीशम सुश्रूषया भजन विज्ञमनन्नमन्न निंदादि सुन्न हृदय में प्रतिष्ठित। ऐसे वैष्णवों का प्रतिपूर्वक सेवा करना चाहिए, जो अनन्य होकर के निंदा इत्यादि कहीं भी नहीं करते, प्राप्त सुख या दुख जो कुछ है बस उसी में संतुष्ट रह करके एकांतिक रूप में उज्ज्वल रस से उनकी सेवा करते हैं, इनके प्रति विशेष भावना के साथ होते हैं। किंतु किसी का निरादर न हो, एक निरादर होता है, एक अनादर होता है और एक अवज्ञा होती है और किसी की निंदा इत्यादि की जाती है, तो इन सब से बच करके उनके प्रति यथा योग्य श्रद्धा ज्ञापन करते हुए रसिक और उन्नत वैष्णवों के साथ में अपना प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। इसी रूप से महालक्ष्मी जिस प्रकार से भगवत प्रिया हैं, धरणी भी उसी प्रकार से भगवत प्रिया हैं। जोग माया काफी बहुत सा रूप है, दुर्गा इत्यादि के भी बहुत से रूप हैं, इनकी भी कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, तुच्छताच्छिल्य नहीं करना चाहिए, यथाजोग्य उनको भी सम्मान देना चाहिए क्योंकि ये भगवत शक्ति है। किंतु उनसे हमारा कोई गहरा भाव नहीं, उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं, उनको हम हाँ लेना कुछ ये है कि आप हमारे ऊपर में कृपा करते रहिए, जो विषयों में हमको मत फंसाइए, बस इतना था, नहीं तो विषयों में फंसा देंगे, इसलिए उनसे यही प्रार्थना करना है। और हमारा गोपियों के प्रति अनुगतमय भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवत शक्ति कहीं पर महाविभूति, कहीं योग शब्द से, कहीं पर योग माया शब्द से इनका अभिधान हुआ करता है। कहीं कहीं मैंने उनको योग माया, आत्म माया, गीता में आत्म माया माने क्या,
योग माया अपने माया,
जो अपने स्वरूप में भगवान की प्रकृति अर्थात तो स्वाभाविक जो शक्ति है वो आत्ममाया है, ये आत्ममाया है। ये भी आत्ममाया कहाँ से आई, इनका रूप क्या है, वही श्रीमती राधिका जी ही हैं, उन्हीं से ही आत्मा, इच्छा शक्ति भी राधिका जी ही हैं। जिस शक्ति के द्वारा माध्यम से सच्चिदानंद भगवान के विलास इत्यादि होते हैं, वो जो शक्ति है योग माया, वो नित्य है, सत्य है, अनादि और अनंत है। कृष्ण के साथ में जन्म लिया, फिर अनादि कैसे रह गई, अपने जन्म के पहले ही बलदेव जी को आकर्षण करके सप्तम गर्भ को यहाँ रख दिया और अपने आप आई कृष्ण के साथ में आठवें उनके यशोदा जी के गर्भ में आई, पीछे से उन्होंने जन्म लिया। तो अपने जन्म के पहले ही वो क्रिया करते हैं, वो नित्य हैं, सनातनी हैं। यही जो योग माया है भजनानंद को बढ़ाने वाली हैं, यही योग माया भगवान की जो लादनी शक्ति हैं और लादनी और संबित, इन दोनों को एक कर उसके सार को लेकर श्रद्धा से लेकर भाव तक और फिर प्रेम से लेकर के महाभाव तक ये बढ़ाने वाली है, भक्तों को दे करके ये अपना दूध पिलाकर उनका पालन पोषण करके ये इतने सब चीज़ों के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं, उसी की आप जो योगमाया कहो या आप। और फिर वही पूर्णिमा के रूप में जो गोपी गर्भ जाप, जो गोपियां साधन सिद्धा जो वहां पर उत्पन्न हुई हैं उनको मिलाती हैं, नंदगांव में अपना डेरा बनाती हैं, सांदीपनी मुनि के मैया के रूप में वहां पर आती हैं, वही योग माया, वही पौर्णमासी। और विचित्र प्रकार के रसों को उत्पन्न कर, जसोदा जी के यहाँ जब जाएंगी तो बासल रस को बढ़ाएंगी, सखाओं के पास में जाएंगी तो उनके सख रस को बढ़ा देंगी, जब दासियों के पास में जाएंगी तो दास भाव को बढ़ाएंगी, सब रसों को वो बढ़ाती हैं और जीवों का प्रतिपालन पोषण करती हैं। वही वो भजनानंद वैचित्र की जननी है, अर्थात माँ है। यदि उनका आश्रय नहीं लिया जाए तो भक्ति वृत्ति नहीं बढ़ सकती। यहां तक कि वही शक्ति भगवान के नाना प्रकार के अवतारों का कारण है, वही योग माया। भगवान की आकृति वेशभूषा लीला इत्यादि की समाधान करने वाली है। जिस समय में कृष्ण ने बंसी बजाई उस समय गोपियां विभ्रम के रूप में जिन अलंकारों को जहां नहीं धारण करना चाहिए उधर में धारण कर लिया, जहां अंजन नहीं करना चाहिए वहां अंजन लगा लिया, उल्टा पुल्टा बन करके वहां पर, ये जो चीज है किसने कराया?
जो
और अनुचित स्थानों पर अनुचित अलंकारों को धारण करके उचित स्थानों पर अलंकार जो धारण किए जाते हैं उससे कोटि गुण अधिक सौंदर्य बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ये योग माया का काम। तो नहा जहां पर नहीं धारण करना चाहिए, जिस मान लिया कि गले में नूपुर पहन करके कोई गोपी चली गई और हार को पैर में लगा दिया या कमर में बांध, और जब कृष्ण के पास में गई होगी तो कृष्ण ने देखा होगा तो पूछा जी भाई ये तो अलंकार बड़ा सुंदर धारण तुमने किया, तो बतलाओ तो उसका कितना मूल्य अधिक हुआ होगा। ये योग माया का कार्य है। प्रेम में कोई ऐसे विशुद्ध हो जाता है, ये चीज वहां पर देख लाया, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, स्वयं भगवान हो जाते हैं इस योग माया के वशीभूत। तो और लोगों ऐसी योग माया का कौन नहीं आराधना करेगा? जो जानेगा सो आराधना करेगा, और जो नहीं जानेगा वो अपने बल पर दो चार बार हरे कृष्ण फेर लेगा और बैठ जाएगा, अपना इधर उधर खाना पीना इसमें सब लग जाएगा संसारी कामों में। यही विलास दुर्वितर्क है, इसी योग माया के द्वारा कृष्ण का रिंगन कार्य, मुग्धता, जसोदा जी की मुग्धता, और जो कुछ है सब कुछ लीला वैचित्री प्रारंभ से भगवान पर और भक्तों पर क्रिया कर, और अपने एक दूसरे रूप से जिसको महामाया भी कहते हैं उसके द्वारा असुरों पर कार्य करते हैं और बद्ध जीवों पर कार्य करते हैं। जब तक वसुदेव जी के पास में वो लड़की आई योग माया, जैसे कृष्ण को इधर से ले गए थे उधर, उधर से उसको योग माया को ला रहे हैं जसोदा जी के पलंग से, जब तक इनके पास रही तब तक तो योग माया रही, और ज्यों ही कंस के कारागार में पहुंची और कंस ने उसे मारने के लिए उठाया, बस उसका महामाया का कार्य आरंभ हो गया और जोग माया अपना अलक्षित रूप में अपना कार्य करने लगी, इसको छाया रूप में बदल दिया। कब उससे निकल गई वो किसी को पता ही नहीं लगा। ऐसे देखने में मालूम पड़ता है ये दोनों एक ही हैं, किंतु दोनों एक नहीं। अरे उसी को तो लाए, उसी को जेलखाना में रखा, उसी को कंस ने पकड़ा और वही अष्टभुजा दुर्गा हो गई। और कंस को लाती ऐसे जोर से लात मारा, वो ढिमिलिया खा गया। अरे ये तो मेरी साक्षात आराध्या देवी है। कब उसमें से कैसे क्या किया, अचिंत शक्ति। कब उसमें से निकल गई, कब क्या हुआ, कब आई, ये जीव के तर्क के अधीन नहीं। जिसको जितनी श्रद्धा होगी और श्रद्धा पूर्वक इन चीजों को पढ़ेगा सुनेगा वो उतना ही इसकी धारणा कर लेगा, और तब फिर अधिक जैसा शास्त्र में कहा गया वैसा मान लेगा, तर्क वितर्क नहीं करेगा। जगत के लोग तर्क वितर्क करेंगे, अरे वही तो यशोदा जी के गर्भ से निकली और वही यहाँ आई, वहां पर आत्ममाया जोग माया और यहाँ पर हो गई महामाया, ये कैसे हुआ, तो उनको कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा। इसलिए जब तक के किसी के हृदय में वैसी श्रद्धा न हो तब तक प्राकृतिक बुद्धि संपन्न लोगों को ये चीजें ठीक है। इसलिए न कर्म बुद्धि जनयेत कर्म संगीना न भेद बुद्धि, उनको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि उनकी बुद्धि में भ्रम हो जाए, अब कर्म भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकर जी बीस पी सकते हैं और हम भी देखा देखी पी लें, उत्साह थोड़ा सा देखने के साथ में हो गया तो क्या होगा, मरेंगे। मीराबाई ने भी तो सर्प हाथ में लिया तो वो बन गया शालग्राम, और विष लिया तो वो अमृत बन गया। हम भी कुछ हरि नाम करते हैं तो हम भी वैसा करेंगे। वैसे ही हम किसी की नकल करने जाएंगे, सब लड़कियां ये सोचें हम विवाह नहीं करेंगे, घर नहीं करेंगे, और हम ऐसे ही भगवान का भजन करेंगे। लड़के भी ऐसा सोचें कि हम लोग भाई विवाह शिवाह नहीं करेंगे और ऐसा भजन करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी को भी हरा देंगे। लड़कियां सोचे जी हम गंगा माता जी को हरा देंगे। वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे वो तो 24 घंटा में 23 घंटा भजन करती थी, तू कितनी करती है। मैंने तो राज्य पाठ छोड़कर के समस्त सुखों को छोड़कर कैसे वृंदावन में आ गई, कितने दूरी पर चल करके, और कैसा त्याग, महान त्याग, कहां उनमें कैसी शक्ति और कहां हम अभी। इसलिए नकल मत करो, अनुगत्य में अनुसरण करो, अनुसरण करने में ठीक है, हम किसी का अनुकरण नहीं करेंगे, अनुसरण करेंगे। इसलिए शिव जी का या गोपियों का या और किसी का हम अनुकरण नहीं करेंगे, हम अपनी शक्ति विचार अनुगत्य इत्यादि के साथ, इसलिए अनुकरण मत करने जाए। तो वह योग माया और महामाया के संबंध में बतला रहा था। प्राकृतिक बुद्धि का काम नहीं है उस चीज को निर्णय कर सके। इसीलिए यदि कोई अनुकरण करते हैं ना क्षणिक आवेग में आवेश में, जो लोग घर छोड़ देते हैं, हैं? घर छोड़ दिया और स्त्री भी छोड़ दिया, फिर कुछ दिन आने के बाद में फिर कहीं नजर चलने लगती है और वैभव के प्रति आकांक्षा होने लगती है, अच्छे पहनेंगे अच्छे खाएंगे, क्या ये यहाँ का भंडारी कुछ खिलाता पिलाता नहीं है, रोज लफड़ा करता है एक ही, हम लोग भी तो घर छोड़ करके आए हैं, कभी अच्छा चीज कभी बनना चाहिए। रघुनाथ दास का चरित्र देखो जे कैसा, सनातन गोस्वामी का चरित्र देखो जे कैसा। इसलिए अनुकरण हम नहीं करने जाए, सब समय अपने आप अधिकार के अनुसार में अनुसरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान उन पर दया करते हैं जो निष्कपट होकर के भजन करता है। इसलिए वो जो शक्ति है भगवान की, नित्या सत्या अनादि अनंता अनर्वचनीय, वचन के द्वारा भी जिनका जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दुर्वितर्क, तर्क की परिधि से अतीत है ये। इनका स्वरूप कोई निरूपण करने में साधारण आदमी नहीं समर्थ हो सकता। केवल उस उच्च कोटि के यदि कोई हो अनुभवी मुक्त महापुरुष तो कुछ कुछ वो कह सकते हैं मानव, अन्यथा वो निरूपण नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लाख बार पढ़ चुके हैं, दूसरों को बार बार उपदेश देंगे, किंतु जब ये कार्य कुछ पड़ जाएगा ना, एक सेकंड में भूल जाएंगे ये शरीर हम नहीं है, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बस सब धरा का तरा रह जाएगा। जैसे नारद जैसे मुक्त पुरुष भी वो रामायण के रामचंद्र जी के आने के कारण में देख, एक सेकंड नहीं लगा और कैसे माया ने उनको नचा दिया। ऐसे ही एक पैसे का स्वार्थ भी हमें लेकर के डुबा सकता है, केवल भजन बल कुछ रख सकता है, किंतु उस पर भी हम लोगों को निरा करके खूब दीनहीन हो करके अपना साधन भजन करना चाहिए। इस योग माया के प्रभाव से ही ये योग माया शक्ति संचरित करती है जीवों के हृदय में। श्रवण कीर्तन इत्यादि रूपा भक्ति का आविर्भाव होता है जीवों के हृदय में। ये योग माया ही योग करा देती है, किस से? लादिनी शक्ति और संबित शक्ति के साथ जीवों के हृदय में यही उदित कराती है। इसी को विशुद्ध सत्व कहते हैं। ये योग माया का ही कार्य है। और भगवान की सेवा में, विविध प्रकार की सेवा में, वैकुंठ से लेकर के द्वारका तक और द्वारका से लेकर के मथुरा, मथुरा से वृंदावन, जितनी प्रकार की सेवाएं हैं इसमें जीवों को लगाती है ये योग माया। भक्ति का जो भेद होता है और रस का जो भेद होता है, भक्ति का भेद क्या? साधन भक्ति, भाव भक्ति, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, और उसमें भी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, और फिर भाव के बाद में नित्य सिद्ध परिकरों में या साधन सिद्ध परिकरों में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये वैचित्र जो है ये सब इन्हीं के द्वारा होता है। भक्ति एक है ना? भक्ति दो नहीं है, ये एक भाव है, किंतु ऊपर से ये श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन इत्यादि 64 प्रकारों में, 9 प्रकार में, 5 प्रकार में, 3 प्रकार में और 1 प्रकार में है। भक्ति की वृत्ति किंतु है एक, रस भी एक ही है, रस अनेक नहीं है, किंतु साधकों के क्षेत्र के अनुसार में यह अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है। भावना एक ही है, श्रृंगार ही एक पूर्ण रस है, मधुर रस, और वही क्रमशः कम कम प्रकाशित होने पर वात्सल्य सख दास्य और इसके रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे भगवान एक होने पर भी भक्ति के तारतम्य से, ज्ञान के तारतम्य से ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण और इत्यादि सब नाना प्रकार के रूपों में दिख पड़ते हैं। भगवान दो नहीं होते, जैसे एक ही चंद्र एंगल ऑफ विजन के द्वारा विभिन्न रूपों में प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी के रूप में देख पड़ते हैं। चंद्र बदलते नहीं है, एक ही चंद्र, अधिकार देखने का ये बदलता है। इसीलिए कभी अमावस्या की रात्रि और कभी प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी हुआ करती। ऐसे ही भगवान एक ही हैं, साधन के तारतम्य से ऐसे दिख पड़ते हैं। ऐसे ये शक्ति भी साधन के तारतम्य से ऐसे ही दिख पड़ती है। ये सब जितनी भी विचित्रताएं हैं, ये सब जोग माया जी का कार्य है। इसलिए जोग माया का कितना प्रणाम और ये सब मंत्र है। राधेश केलि प्रभुता विनोद विनाश विज्ञान ब्रजबंदितांगली कृपालुताद्या विश्ववंद्या श्री पौर्णमाशम शीर्षान्म श्री पौर्णमाश्याश्चरणारविन्दं वंदे भक्तिवितान हेतुं श्री कृष्ण लीलाब्धि तरंग भग्नम जस्या मन सर्व निषेध। हजारों जगह उनको प्रणाम। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी नंदसुतम
नंदगोपसुतम देवी पतिमे कुरुते नमः।
वो जोग माया का ही है। वहां महामाया शब्द होने पर भी महामाया मत लगा लेना, ना वही है
महती माया।
इसलिए भगवान की लीलाओं के जो वैचित्र हैं वो सब ये जोग माया के ही हैं। यद्यपि उस शक्ति का प्रभाव और चेष्टा अनर्वचनीय, अनर्वचनीय मैंने वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, तभी भगवान के शुद्ध भक्त लोग इसको अवगत होते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं। भगवान की महिमा अनर्वचनीय है, कभी भागवत में उसका वर्णन नहीं किया गया, नहीं किया है। ऐसे ही शक्ति की महिमा भी अनर्वचनीय है, तभी भगवान के शुद्ध भक्त लोग इसे अवगत होकर के इसका वर्णन किया। सुखदेव गोस्वामी, व्यास, पराशर, नारद, इन सब लोगों ने, हमारे रूप सनातन इत्यादि ने, जीव गोस्वामी ने और अब जितने आचार्य हैं सब लोगों ने इसका वर्णन किया है। परा अपरायो शक्तियो परा शक्ति निर्भिद्यते प्रभु स्वाभाविकी साजा ख्याता प्रकृति इत्यपि। वही जो माया शक्ति महामाया जोग माया जो वही परा और अपरा कहला, दो रूपों में वो देखी जाती है। एक उनके उनकी छाया का नाम अपरा और उनको जो स्वयं है उनको पराशक्ति, जो स्वरूप की हैं उनको कहा गया परा और उनकी जो छाया रूपा हैं उनको कहा गया
अपरा।
छाया माने क्या? जो अंगों से अपृथक रहते हुए भी कार्यतः उस कार्य को नहीं करती हैं उसको कहा गया अच्छा। छाया माने वहां पर पेड़ की छाया जैसा नहीं, वो तो निष्क्रिय है। हमारी जो छाया होती है वो निष्क्रिय होती है, कभी निष्क्रिय एकदम नहीं रहती। जैसे पेड़ों की छाया में शीतलता तो आती ही है ना, फल उसमें रह जाएंगे। पेड़ में जैसे पत्ते फल होते हैं, लकड़ी होती है, वैसे इसमें तो नहीं होती, किंतु एक तो गुण है, सूर्य के ताप को वो हरण करके उसे सुशीतल बना देती है वो छाया। छाया में जाने से पैर नहीं जलता है, छाया में चलने से पैर नहीं जलता है। कुछ तो क्रिया जरूर है।